रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगो। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तादिशुतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। थोड़ा आगे आ जाओ। कुछ भक्त लोग बाहर में हैं। घर के अंदर आवाज सुनाई देती है? पकड़ के माइक अच्छे नहीं स्पीकर अच्छे सुनाई दे रहा है? वहां ठीक, कोई असुविधा नहीं है। ट्रांसेंडेंटल हियरिंग। हरे कृष्णा। और यहाँ सब जगह हुआ गया सबको? बहुत अच्छा। वैसे थोड़ा शेक करने से जगह हो जाता है। तो हम सुबह बोला था कि ईशो उपनिषद के आधार पर हम आज शाम को चर्चा करेंगे। इसका पहले भूमिका में देखते हैं क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। ये याद रखना कि जब मैं ऐसी क्लास देता हूं कि इस विशेष शास्त्र के आधार पर, तो पूर्ण रूप से उसका चर्चा हम नहीं कर पाते हैं दो एक दिन में। ये सेमिनार या क्लासेस का उद्देश्य ये होता है कि इसके बारे में, इस शास्त्र के बारे में हमें कुछ जानकारी हो जाए, ताकि हम नियमित रूप से उसको पढ़ने को प्रेरणा मिले, है ना? मैं कब तक रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा शायद 22 तारीख तक। तो मतलब आज 17, 18, 19, 20, 21 पांच दिन। तो पांच दिन में ईशोपनिषद का सारे श्लोकों का संभावना होगा, संभव होगा? 17 श्लोक का नहीं होगा, बल्कि शायद मैं 2 या 3 श्लोक हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे 3 श्लोक के ऊपर। परंतु 3 या 4 श्लोक पढ़ने के पश्चात ऐसा होना चाहिए कि आपको उत्साह मिले, प्रेरणा मिले, ताकि आप हर रोज सुबह को उठते ही ईशोपनिषद पाठ करना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा होगा, ऐसा आप करेंगे, तो मैं सोचूंगा कि मेरा क्लास देना सफल हुआ है। तो हम भूमिका से शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी इसका भूमिका में क्या बताया है, ये मैं पढ़ रहा हूं आज। काफी लंबा भूमिका है, 13 पृष्ठ। किसके पास किताबें हैं? ओके, वेरी गुड। ये भूमिका है वेदों की शिक्षाएं। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1968 को कानवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या की कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष ये है कि वो त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारा देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की, यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की भी सभा में न जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है, किंतु उन्होंने एक न सुनी, उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटियां करना मनुष्य का स्वभाव है, ये बद्ध आत्मा का एक दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्वमान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वो हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय हैं, किंतु आप ये शरीर नहीं हैं, ये माया है। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों न हो, किंतु वो भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि ये पहले कहा जा चुका है कि वो माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वो तर्क करता है। अर्चना, डू यू हैव एन इंग्लिश? ओके, वेरी गुड। लेकिन वो तर्क करता है, मैं सोचता हूं कि ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन उसे अपनी ही स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। ये दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वो स्वयं दोषी रहता है, यही इसका रोग है, यही धोखाधारी है। अंतिम बात ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्राय कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं, तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए, तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतवे आपके पास दर्शन करने की शक्ति है क्या? अब हम आपने इन अपूर्ण इंद्रिय से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। न ही हम स्वयं पूर्ण हैं, अतएव हम वेदों को यथा रूप में स्वीकार करते हैं। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी नाम है। हम हिंदू नहीं हैं, हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। ये वर्णाश्रम कहलाता है। भगवद गीता में 4:13 कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। अतएव वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। ये वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ये स्वीकृति है। उदाहरणार्थ भारत में गोबर के शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप ये वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान में ये कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लिप दे तो वो शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं, ये विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि इसमें समस्त रोग नाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो, कि ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेश की व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है। Now, Gora, do you want to read? Oh, you are reading English. हम मध्य प्रदेश में हैं।
Next page.
माइक तो जावे ओखन पूजन तो। तुम यहाँ आ जाओ। गोरे के बाद कृष्णदास। Give him the mic.
वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत के वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञान पर पाना कि वह आपका पिता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता गया। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य प्रमाण के तीन प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह अनेक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का है? अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होती हैं, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान, अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ, डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है, किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोग तथा निवासी शाश्वत है? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। आध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रचार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवद गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस जगत के परे हैं, इस जगत से परे हैं, इस दृश्य जगत से परे हैं। और आगे फिर इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप यही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मर्त्य स्वीकार करते हैं। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा न हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है।
वेरी गुड, थैंक यू।
ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप जैसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा है। वो हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचे जो मान लीजिए 10000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुनने हुए होना चाहिए। उसे ब्रह्मा में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण है, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप है, लेकिन वे सब एक है। वे हमारे जैसे रूप नहीं है, जो विनाशशील है। उनका स्वरूप अच्युत है, मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वे अनंत है और उनका स्वरूप उनके अनेक रूप के भी अनंत है। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी है। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन है, लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम नहीं थे, उनके प्रपौत्र भी थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दिखा दे सकता है। ये रहे हैं वे, उन्हें ग्रहण करो। यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि वे एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे उसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप से देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजुः। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति, श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न हो तो होते हैं, लेकिन सम्यक रूप से शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोग के लिए उन्होंने महाभारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, तथा 18 पुराण का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश है। उपनिषद वेदों के अंश है। तत्पश्चात व्यास देव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेद का अंतिम वचन है। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशों से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान श्री कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विदा एव चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। अतः चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णव का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रमाणित है, प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य और माध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य है, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतः लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्यास वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद भागवतम लिखा है। श्रीमद भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मादस्य यतः। इस जन्मादस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित नहीं करता कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्धृत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य में उद्धृत है, तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य को चेतना भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता से समझने का प्रयास करें।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो वेद के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। हाँ, ये प्रभुपाद जी का विशेषता है। कितने सुंदर रूप से, कितने सरल भाव से श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही जटिल तत्व को प्रकाश करते हैं। और प्रभुपाद की ये विश्लेषण का सरलता का उद्देश्य क्या है, और यह मतलब क्या है, कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो खुद देख रहे हैं उसको उस विषय में समझाना सरल होता है। जो वस्तु हम देखते हैं उसके बारे में हम बहुत सुंदर रूप से, सरल रूप से प्रकाश करते हैं, व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से आध्यात्मिक जगत को, भगवान के लीलाओं को, भगवान को स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इतनी सरल रूप से प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के बारे में समझाना उनके लिए संभव हुआ है। जो समझा है वो दूसरे को सरल भाव से समझाना सकते हैं, और जो समझा नहीं है वो अगर दूसरे को समझाने का कोशिश करेंगे तो कितने भी वो ना कहे वो कुछ भी समझाना नहीं सकेंगे, क्योंकि उसको तो खुद ही मालूम नहीं है वो क्या है। प्रभुपाद जी का वर्णन कितनी सुंदर है। वेद का मतलब है ज्ञान। चाहे भौतिक जगत का भी हो या आध्यात्मिक जगत का भी हो, वेद में उसका वर्णन हुआ है। मतलब ज्ञान केवल आध्यात्मिक जगत का ही नहीं, भौतिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए, वेद में उसका वर्णन है। बल्कि जो भौतिक जगत के बारे में जो ज्ञान वेद में है उसके त्रिगुणमयी या त्रिगुणात्मिका कहा गया है, त्रिगुण विषया वेदा। आपात दृष्टि से, साधारण दृष्टि से, अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से जब हम वेद को देखते हैं तो लगता है कि वेद ये तीन गुण समन्वित जो भौतिक जगत है उस जगत के बारे में वर्णन किया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। बल्कि भगवान क्या हमें बोल रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन। ये तीन गुणात्मिका त्रिगुण का जो वर्णन वेद में हुआ है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, मतलब निस्त्रिगुण भव अर्जुन। ये तीन गुणों की जो 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 आधार, तीनों गुणों के पर आधारित जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के परे पहुंचो, क्योंकि वेद का असल उद्देश्य है उस जगत के बारे में हमें समझाना। यद्यपि इस जगत के बारे में भी ज्ञान हुआ है, वो है कर्मकांड का विश्लेषण, कर्मकांड का अध्याय, कर्मकांड, ज्ञानकांड और तत्पश्चात भक्ति। कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्ति। तो कर्मकांड में क्या होता है, भुक्ति, भौतिक जगत को कैसे भोग करना चाहिए। साधारणतया मनुष्य ने भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं, है ना। तो वेद में निर्देश हुआ कैसे भोग करोगे, सही रूप से भोग करना, ताकि इस भोग के कारण तुम इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हो। इस तरह भोग करो जिसके कारण तुम इस भौतिक जगत से आगे बढ़ जाओगे, आगे चले जाओगे, भुक्ति। तो ये भुक्ति के पश्चात आता है मुक्ति, वो है ज्ञान कांड का अध्याय। भुक्ति और मुक्ति, इसके पश्चात है जो ज्ञान कांड की चरम सीमा में है योग। योग भी ज्ञान कांड की ही अंतर्गत है। हम मुक्ति चाहते हैं, बल्कि मुक्ति कैसे मिलेगा, मुक्ति तभी संभव होगा जब हम सिद्धि प्राप्त होंगे। तो सिद्धि प्राप्ति के उपाय है योग, अष्टांग योग, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। और सिद्धि के पश्चात क्या होता है, सिद्धि जब मिलता है, सिद्धि में क्या होता है, योग सिद्धि में, योग सिद्धि है समाधि। समाधि का मतलब क्या है, समाधि का मतलब है हृदय के अंतस्थल में परमात्मा रूपी परमेश्वर भगवान को दर्शन, ये है सिद्धि, योग सिद्धि। अष्टांग योग का जो समाधि है, समाधि में ऐसे हृदय में भगवान को दर्शन होता है। तो ये जो भगवान का जो दर्शन, ये दर्शन का परिणति क्या होता है, ये दर्शन करने के पश्चात क्या होता है, भगवान को दर्शन करने से भगवान के पास आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के पास अर्पण कर देते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं भगवान विशाल है, भगवान असीम है, भगवान महान है, भगवान परम तत्व है, और हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम कितने बड़े हैं, केशाग्र सतभागश सतधा, हम मानते हैं हम कितने बड़े आदमी हैं, बल्कि असल में हम क्या हैं, केश का अग्रभाग का 100 भाग को और 100 भाग, 10,000, 1/10,000, 10,000 भाग का 1 भाग के समान। केशाग्र सतभागस्य शतधा, सतभागस्य वो इसको 100 भाग करने के पश्चात उसको लेकर और भी 100 भाग करो, तो आप कितने बड़े आदमी हैं। तो ऐसे जब हमारे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं हम सब, तब क्या होता है, भगवान इतने महान हैं और हम इतने क्षुद्र हैं, तो भगवान के पास ही, और वो भगवान मेरा आश्रय है, मेरा प्रभु है, मैं उनका अंश हूं, भगवान है पूर्ण, मैं हूं उनका क्षुद्र अंश। मामई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं ये जीवात्मा के रूप में। तो इसलिए जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं तब भक्ति का शुरुआत होता है। भक्ति का शुरू ऐसे ही होता है। तो ऐसे देखे ना, कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्ति। दूसरे युगों में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होता था, कर्मकांड के पश्चात ज्ञानकांड, और ज्ञानकांड की पूर्णता प्राप्त होने के पश्चात भक्ति मिलता था, योग सिद्धि के पश्चात भक्ति मिलता था। बल्कि आज योग सिद्धि हुआ हम सबको, हमको नहीं, योग सिद्धि क्या, भौतिक सिद्धि भी नहीं मिला। कितने कुछ हम करने का कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें भी हमको सफलता नहीं मिलता है। फिर भी आध्यात्मिक जगत का जो परम श्रेष्ठ वस्तु है उसको उसको हम प्राप्त हो चुके हैं। कैसे, यद्यपि हम बिल्कुल न लायक हैं, भगवान की कृपा से हमें ये मिल गया है। इसके दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है कि कोई भीख मांगा के लिए, कोई भिखारी के लिए करोड़पति बनना संभव होता है, भिखारी कभी करोड़पति बन सकता है, नहीं, बेचारे को 2-4 पैसा भी नहीं मिलता है, वो करोड़पति कैसे बनेंगे। लेकिन अगर कोई अरबपति, जिसके पास करोड़ों के करोड़ों अरब संपदा है, वो अगर चाहे तो 1-2 करोड़ उसको दे सकता है, हाँ, तो भीख मांगा भी करोड़पति बन सकता है। भीख मांगा के लिए करोड़पति बनना तभी संभव होता है जब और कोई करोड़पति उनको करोड़ों रुपया दे देते हैं। साधारणतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर राजा चाहे तो राजा ये बोल सकता है कि मेरे राजकोष सबके लिए, भिखारियों के लिए खोल दो, वो चाहे जितना भी रुपया चाहे, वो जितना भी चाहे संपदा वो ले सकता है। ये संभव होता है राजा अगर चाहते, बल्कि राजा नहीं करते हैं। अगर राजा चाहते हैं कि राजा को कोई रोक नहीं सकता है, राजा को रोकना अपराध होता है, राजा को विरोध कार्य करना किसी के लिए संभव नहीं होता है, बल्कि राजा नहीं करते हैं वैसे। अगर करता तो कोई रोक नहीं सकता राजा को, क्योंकि ये राजा का इच्छा है। राजा नहीं करता, बल्कि अगर कोई राजा पागल हो जाता है तो कर सकता है, क्योंकि वो पगलापन से कुछ भी कर सकता है। वो बोल सकता है ये खोल दो मेरा राजकोष, और सबको जितना चाहे, भिखारियों को सब लेने दो, जो जितना चाहे ले जाए, तब संभव होता। तो ऐसा ही हुआ है, एक राजा का नहीं, राजाओं का राजा का भगवान का। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण प्रेम में एकदम पागल हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर एकदम पागल हो गया, और पागल होके ऐसा काम करना शुरू किया। आओ ले लो कृष्ण भक्ति, जो शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ हो प्रेम, सवा करे जांचे, जांच रहे हैं, बांट रहे हैं, ले लो भाई, आकर ले लो। तो आप बस सोचो हमारा कितना सौभाग्य मिला है, हम कितने सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। ये है कलियुग का एक विशेषता। कलियुग में केवल ये संभव होता है, दूसरे युगों में नहीं। यद्यपि हम बिल्कुल न लायक हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर इतनी अद्भुत रूप से वर्षित हो रहा है। तो आज हम केवल ईशोपनिषद का भूमिका तक ही रखेंगे, कल से हम उसका, कल भी श्लोक, पहला श्लोक नहीं, कल भगवान के पास जो प्रार्थना है जिससे शुरुआत हुआ है, ईश स्तुति। ईश का मतलब ईश्वर, परमेश्वर, भगवान। भगवान की जो वंदना हो रहा है, स्तुति हो रहा है, इससे शुरुआत होता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? ओके, वेरी गुड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yeah. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad, Prabhupad. गौर प्रेमानंदे हरि नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि।